الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ سورہ کہف کی تمام سورہ ہے، یعنی دونوں مل کے ایک جوڑا بناتی ہیں. یہ ایک پیئر ہے. قرآن مجید نے اپنے آپ کو مثانی کہا ہے، کتابم متشابہم مثانی. مثانی کا مطلب ہے جس کی صورتیں جوڑا جوڑا کر کے ترتیب دی گئی ہیں. سورہ کہف میں وہ اعتراضات زیر بحث تھے جو اہل کتاب خاص کر نصارہ نے القا کیے. اس میں اب نصارہ کے دین کو موضوع بنا لیا گیا ہے. وہ لوگ پیچھے بیٹھ کر جو چیزیں القا کر رہے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل کے ہاں بھی وہ اضطراب کا باعث بن جائے، تو اب یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان کے اپنے دین کی حقیقت ان پر بھی واضح کر دی جائے اور بنی اسماعیل پر بھی واضح کر دی جائے. چنانچہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. قاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ. یہ سورہ قاف ہا یا عین صاد ہے. سورہ کا نام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے جو نام رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں رکھے ہیں، الف لام میم، ہا میم. اسی طرح اس سورہ کا نام ہے. ہم سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ عربی زبان کے حروف تہجی، یہ الف با، عبرانی سے آئے ہیں. اور قدیم زمانے میں جب یہ حروف ایجاد ہوئے تو ان کی صورتیں اسی طرح بنائی جاتی تھیں جیسے چیزیں ہوتی ہیں. یعنی اگر جیم کی صورت بنانی ہے تو وہ اونٹ کی صورت بن جائے گی، اسی طرح اگر بے کی صورت بنانی ہے تو وہ ایک خیمے کی بن جائے گی، بیت جس کو کہتے ہیں یا گھر کہتے ہیں. تو وہی گویا ان کے معنی بن گئے. ان معنی کا لحاظ کر کے قرآن مجید سورہ میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان میں سے نمایاں چیزوں کو سورہ کا نام بنا دیتا ہے. یہی عربوں کا ذوق ہے. چنانچہ خود بعد میں جو صحابہ نے نام رکھے ہیں اس میں بھی اگر غور کیجئے تو یہی ملحوظ ہے. خاص کسی سورہ کا نام صحابہ نے اس کے موضوع یا مدعا یا مضمون کے لحاظ سے رکھا ہے. اسی طرح کسی چیز کو علامت بنا لی ہے. سورہ بقرہ ایک بڑی سورہ ہے، اس میں یہود پر اتمام حجت ہوا ہے، ایک نئی امت کی تاسیس کی گئی ہے، بڑے اہم مباحث اس میں سامنے آتے ہیں. لیکن سورہ کا نام چونکہ ایک جگہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ آ گیا ہے تو بکرا رکھ دیا گیا، اس کا مضمون سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح آل عمران کا ایک جگہ ذکر آ گیا، اسی کو نام بنا دیا گیا. تو صحابہ نے بھی اسی طریقے سے علامتوں پر نام رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی علامتوں ہی پر نام رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے حروف کو علامت بنا لیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے معنی تھے اور ان سے لوگ ان چیزوں کا ایک تصور قائم کر لیتے تھے. इसकी सबसे नुमाया मिसाल सूरह नून है। नून कदीम ज़माने में मछली की सूरत में लिखा जाता था, चुनाचे उसके मानी भी वही हो गए। ख़ुद कुरान मजीद में सैयदना यूनुस को जुन्नून कहा गया है, मछली वाला, और जिसमें उसका ज़िक्र है उस सूरह का नाम भी रख दिया गया, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। ये नामों के बारे में इमाम फराही का नुक्ता नज़र है। अगरचे हर हर नाम की क्या मुनासबत है इसकी तहकीक तो अब बड़ी मुश्किल है, लेकिन सबसे करीने क्यास ज़ुबान के सही उसूल पर मबनी यही नुक्ता नज़र है। ये सूरा काफ हा या एन स्वाद है। ज़िक्र रहमत रब्बे का अब्दहू ज़करिया, ये तेरे परवरदिगार के फजल व रहमत का ज़िक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर किया था। इब्तदा यहाँ से की है, अपने बंदे ज़करिया पर किया था और उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया ज़िक्र। उस पर मैंने लिखा है लफ्ज़ ज़िक्र यहाँ उसी मफहूम में है जिसमें आगे उज़्कुर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। हम ये कहते हैं कि अब ये फलां बात का ज़िक्र है, तो उसका मतलब ये है कि अब मैं इस बात का ज़िक्र करने वाला हूँ, या मैं इस बात का ज़िक्र करना चाहता हूँ, या अब हम इस बात का ज़िक्र करेंगे। तो इसको अदा करने के उर्दू में भी ये दोनों तरीक़े हैं, अरबी ज़ुबान में भी ये दोनों तरीक़े हैं। यहाँ ज़िक्र के लफ्ज़ से उसको अदा किया है। ये तेरे परवरदिगार के फजल व रहमत का ज़िक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर किया था, यानी ज़करिया की तारीख़ सुनाना पेश नज़र नहीं है, ज़करिया की सीरत बयान करना पेश नज़र नहीं है। अल्लाह के एक ख़ास बंदे ज़करिया पर अल्लाह के फजल व रहमत का ज़ुहूर कैसे हुआ उसको बयान करना पेश नज़र है। तो ये बता दिया इब्तिदा में कि वो क्या चीज़ है जो सामने रख कर अल्लाह ताला यहाँ ज़करिया के बारे में कुछ कहेंगे। ये तेरे परवरदिगार के फजल व रहमत का ज़िक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर किया था। अपने बंदे ज़करिया, इसकी वजाहत मैंने इस तरह की है कि आयत में लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल हुआ है। बंदे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ अब्द है। आयत में लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल हुआ है, ये हज़रते ज़करिया के इख्तिसास को बयान करता है। यानी यहाँ ये महज इस बात का इजहार नहीं है कि ज़करिया मेरे बंदे थे, उस लिहाज से तो हम सब अल्लाह के बंदे हैं, फरिश्ते भी अल्लाह के बंदे हैं, जिन्नात भी अल्लाह के बंदे हैं। ये ख़ास पहलू से बयान हुआ है। आयत में लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल हुआ है, ये हज़रते ज़करिया के इख्तिसास को बयान करता है। उस्ताज इमाम के अल्फाज में जिसको अल्लाह ताला ख़ुद अपना बंदा कहकर याद फरमाए, उसके लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है। यानी सिर्फ इस हकीकत को बयान करना मकसद नहीं है कि हम अपने बंदे ज़करिया का ज़िक्र कर रहे हैं, बल्कि ये बयान करना पेश नज़र है कि वो फिलवाके हमारा बंदा था। यानी एक तो ये है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है बंदों की हैसियत से, और एक दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद हम भी इस शऊर के साथ जिए कि हम उसके बंदे हैं। इंसान जब अल्लाह की बंदगी के शऊर के साथ जीता है तो यही उसका दीन में दाखिल होना है। दीन इसी हकीकत का नाम है। चुनाचे मैंने जब अपनी किताब मीज़ान में दीन हक के ज़ेरे उन्वान ये बताया है कि दीन अपनी पूरी तस्वीर में है क्या, तो वहाँ सबसे पहले इसी चीज़ को मौजू बनाया है कि दीन की हकीकत क्या है। वो हकीकत अबूदियत है, बंदा होना है, बंदगी का शऊर है, इबादत है। इसीलिए कुरान ने सूरह ज़ारियात में फरमाया है वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों को अपने बंदों की हैसियत से पैदा किया है, उनसे मुतालबा भी यही है कि वो बंदे बनकर रहे। यानी बंदगी के शऊर के साथ जिए, बंदगी के एहसास के साथ जिए और बंदगी के तकाजे पूरे करने के लिए हर वक्त तैयार रहें, यही दीन की हकीकत है। अब ये हकीकत जाहिर है, जिस तरह एक तुख्म जहूर पजीर होता है तो एक पूरा दरख्त उससे पैदा हो जाता है, इसी तरह जब ये तुख्म बरगोबार लाता है, किश्ते वजूद में बरगोबार लाता है, तो फिर दीन के सारे अहकाम और हिदायत उससे वजूद पजीर हो जाती। तो यहाँ ये इस पहलू से इरशाद हुआ है। ये ज़करिया कौन थे? हम सूरह आले इमरान की आयत 37 की तफसीर में बयान कर चुके हैं कि ये सैयदना हारून अलैहि सलाम के ख़ानदान से और सैयदा मरियम के खालू थे। सैयदा मरियम से इनका रिश्ता ये है, यानी उनकी खाला इनके घर में थी और ये खुद सैयदना हारून के ख़ानदान से हैं। ये मालूम है कि सैयदना मूसा की औलाद भी रही है, सैयदना हारून का भी पूरा कबीला आगे अहद बहद बाइबल में नज़र आता है, बल्कि उन्हीं को वो सब जिम्मेदारियां दी गई थीं जिन जिम्मेदारियों का ताल्लुक़ मज़हबी मरासिम से या माबद की खिदमात से था, वो सैयदना हारून ही के ख़ानदान में रही हैं। तो ये सैयदा मरियम के खालू थे। बनी इसराइल में कहानत का जो निज़ाम कायम किया गया था, कहानत यानी वो लोग जो माबद में खिदमात अंजाम दे, वो लोग जो माबद में खिदमात अंजाम दे वो बनी इसराइल के यहाँ काहिन कहलाते थे। मज़हबी जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए माबद में कुछ लोग बाकायदा मुकर्रर होते थे, ये ज़्यादातर बनी लावी ही में से मुकर्रर किए जाते थे, इनका आगे भी जिक्र आएगा। यही कुर्बानियाँ कबूल करते थे, यही मक़दस के पास जाकर दुआ करते थे, और ऐसा भी होता था कि किसी मौके पे कोई बशारत अगर अल्लाह ताला की तरफ से मिलती तो इनके ज़रिए से वो कौम को पहुंचा दी जाती थी। ये एक पूरा निज़ाम था जो उनके यहाँ कायम था। अल्लाह ताला की किताब या अल्लाह के पैगंबरों को मानने के नतीजे में जो कौम भी वजूद में आएगी उसमें नागुज़ीर तौर पर दोनों तरह की क़यादत पैदा हो जाएगी। एक वो क़यादत जो दुनिया की हर कौम में पैदा होती है, सियासी क़यादत, अल्लाह ताला लोगों में उलमा भी पैदा करते हैं, शायर भी, अदीब भी, साइंसी ज़ौक रखने वाले भी, इसी तरह हर कौम में सियादत व क़्यादत की सलाहियतें रखने वाले लोग भी पैदा करते हैं। सियादत और क़्यादत की सलाहियत जिन लोगों में होती है उनको वो ये हौसला भी अता फरमाते हैं कि वो आगे बढ़कर ये जिम्मेदारियां अंजाम दें। लेकिन मज़हबी जमातों में जैसे कि मुसलमान हैं, जैसे कि इससे पहले मुसलमान कौम बनी इसराइल थे, इस तरह की जमातों और इस तरह की कौमों में मज़हबी क़्यादत भी वजूद में आ जाती है। चुनाचे इसका नतीजा एक कशमकश की सूरत में भी निकलता है। मज़हबी क़्यादत भी अपना असर व रसूख कायम करना चाहती है और जिन चीज़ों को वो कौम के लिए ज़रूरी समझती है ये भी चाहती है कि वो मलहूज़ रहें, इसी तरह सियासी क़्यादत के अपने अज़ायम होते हैं, तो इससे एक कशमकश भी पैदा हो जाती है। बनी इसराइल के यहाँ इसका खात्मा कर दिया गया था, उनके यहाँ मज़हबी क़्यादत ही तमाम मामलात को देखती थी और बिलमूम पैगंबर ये ज़िम्मेदारी अंजाम देते थे। रवायत में भी बयान हुआ है ना कि कानत तसूसुहुमुल अम्बिया, यानी उनकी सियासत क़्यादत की जिम्मेदारी पैगंबरों पर रही, और अगर किसी मौके पर पैगंबर नहीं है या पैगंबर बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं तो फिर उनके नीचे एक नियाबत का निज़ाम भी मौजूद था जो कहानत की सूरत में कायम था। चुनाचे जब उन्होंने मुतालबा किया है कि हमारे यहाँ कोई बादशाह होना चाहिए, यानी यानी वो मजहबी क़यादत के बजाय अब सियासी क़यादत, और सियासी क़यादत भी बादशाहत की नौईयत की चाहते हैं। तो बाइबल में एक मुकालमा है जिस पे अल्लाह ताला ने उनको समझाने की कोशिश की है। उन्होंने जब इसरार किया तो फिर उनके यहाँ खुद अल्लाह ताला की तरफ से बादशाह मुकरर कर दिया गया, तालूत को मुकरर किया गया, फिर दाऊद, सुलेमान, और इनको अल्लाह ताला ने पैगंबरी अता कर दी। यानी कि आदत फिर भी मजहबी और सियासी एक ही रही, अल्लाह ताला ने पैगंबरों को इनका बादशाह बना दिया। ये सूरत हाल रही। तो यहाँ कहानत के उस निज़ाम का जिक्र है, यानी जो पैगंबरों ने माबद बना दिए थे, और इनके यहाँ तो एक बड़ा माबद था जिसको हैकले सुलेमानी कहा जाता है। उस माबद की खिदमत जो लोग करेंगे, जो उसकी तौलियत की जिम्मेदारी अदा करेंगे, उसमें मजहबी रसूम जिनकी क़्यादत और रहनुमाई में पूरी की जाएंगी, वो काहिन कहलाते थे। बनी इसराइल में कहानत का जो निज़ाम कायम किया गया था, उसकी रूह से लावी बिन याकूब का घराना मजहबी खिदमात के लिए खास। लावी बिन याकूब का घराना, मुख्तलिफ ख़ानदान थे इनके, जैसे मालूम होता है कि 12 ख़ानदान थे। तो उनमें से जो लावी बिन याकूब हैं, इनके घराने को मजहबी खिदमात सपुर्द की गई थी। कदीम ज़माने में जब कबाइली नौईयत का नज़्म होता था तो यही तरीका इख्तियार किया जाता था। हम जब बनी इस्माइल की तारीख़ पढ़ते हैं, वहाँ भी यही था कि फ़लाँ लोग बैतुल्ला की ये खिदमत अंजाम देंगे, फ़लाँ लोग ये खिदमत अंजाम देंगे, और फ़लाँ फ़लाँ लोग हैं या फ़लाँ कबीला है जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो पूरी कौम के सियासी मसाइल को देखे। इस तरह एक तकसीम कर ली जाती थी, उसमें क़्यादत खुद ब खुद पैदा होती रहती थी, और उसके लिहाज से लोग जिम्मेदारियाँ उठाते रहते थे। चुनाचे खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह की जिम्मेदारियों को तब्दील नहीं किया। यहाँ तक कि बैतुल्ला की मिफ्ताह जिन लोगों के पास थी, उन्हीं को आपने भी दी, और इस वक्त तक भी वही ख़ानदान है जो बैतुल्ला का दरवाज़ा आकर खोलता है। उनसे आपने फरमाया और हिदायत भी कर दी कि क़यामत तक कोई जिसारत ना करे कि इनसे ये मिफ्ताह या ये चाबी ले ली जाए। तो इस तरह की तकसीम कदीम ज़माने में रही। उसकी रूह से लावी बिन याकूब का घराना मजहबी खिदमात के लिए ख़ास था। फिर बनी लावी में से, यानी जो इस घराने के लोग थे, बनी लावी, जैसे हम बनी आदम कहते हैं, फिर बनी लावी में से भी मकदस में खुदावंद के आगे बखूर जलाने, यानी जो आखिरी जगह थी जहाँ पर्दे तने रहते थे, जहाँ आम लोग नहीं जा सकते थे, काहिन ही वहाँ जाते थे, वहाँ बखूर जलाया जाता था, एक ख़ास तरह की खुशबू जलाई जाती थी। वो जलाने और पाक तरीन चीज़ों की तकदीस की खिदमत, वहाँ इन लोगों ने कुछ तबर्रुकात भी रखे हुए थे। बताया जाता है कि पहले ज़माने में सैयदना मूसा का असा भी था, उनकी पोशाक भी थी, और इस तरह की बात चीज़ें, और तौरात की अलवाह भी उसमें रखी हुई थी। वो तो बाद में गारतगरी हुई, उसमें क्या हुआ, लेकिन यही बताया जाता है। बल्कि उसको एक ताबूत में बंद कर दिया गया था, उसका जिक्र कुरान में भी है। तो ये लोग आगे जाकर पाक तरीन चीज़ों की तकदीस की खिदमत अंजाम देते थे। ये सैयदना हारून के ख़ानदान के सपुर्द थे, यानी बनी लावी भी वहाँ तक नहीं जाते थे। दूसरे बनी लावी मकदस के अंदर नहीं जा सकते थे, बल्कि सहनों और कोठड़ियों में काम करते थे, वहाँ जहाँ आखिर में जाके दुआ की जाती थी या कुर्बानियाँ पेश की जाती थी, वहाँ तक ये नहीं जाते थे, बल्कि सहनों और कोठड़ियों में काम करते थे। अब भी जो जगह मौजूद है, वहाँ यहूद कदम नहीं रखते। उसकी वजह यही है कि वो ये समझते हैं कि वो कौन सा मकाम है जिस पर आम लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो मुतय्यन नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो वही सखरा या चट्टान हो सकता है उसके करीब हो, अंदाज़ा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम उस पूरे अहाते ही में दाखिल नहीं होंगे। इस चीज़ को वो उसके तकद्दस के ख़िलाफ़ समझते हैं। वहाँ तक ये लोग नहीं जा सकते थे। दूसरे बनी लावी मकदस के अंदर नहीं जा सकते थे, बल्कि सहनों और कोठड़ियों में काम करते थे। सब्त के दिन, ये जो हफ्ते का दिन है, सब्त के दिन और ईदों के मौके पर, इन लोगों के यहाँ एक से ज़्यादा ईदों का तذکرہ ہے۔ وہ بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو کئی عیدیں مقرر کی گئی ہیں۔ سبت کے دن اور عیدوں کے موقع پر سوختنی قربانیاں چڑھاتے تھے۔ سوختنی قربانیاں یعنی جن میں قربانی کا گوشت جلا دیا جاتا ہے، اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کی مدد کرتے تھے۔ زکریہ بنی ہارون کے خاندان میں سے، یعنی یہ بنی ہارون میں سے ہیں، اور اس خاندان میں سے ابیہ کے سربراہ تھے، یعنی ان کی نوعیت اس خاندان میں اس طرح کی تھی۔ چنانچہ اپنے خاندان کی طرف سے یہی معبد کی خدمت انجام دے۔ معبد کی خدمت کے لیے جو خاندان مقرر تھے، ان کی ذمہ داریاں قوم اٹھاتی تھی، اور ان میں سے بعض لوگ مقرر کر دیے جاتے تھے، ایک دو چار، جو معبد ہی میں رہتے تھے اور عبادت کرتے یا اس کو صاف ستھرا رکھتے۔ اور جیسے کہ قرآن مجید نے بنی اسماعیل کو کہا ہے کہ میرے گھر کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھو، اور ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھو کہ یہاں نماز پڑھنے والے آئیں، یہاں طواف کرنے والے آئیں۔ اس کو تولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ گویا متولی ہیں اس گھر کے، اس کے مجاور ہیں، اس کے متولی ہیں، ان کو وہاں سب خدمات انجام دینی ہوتی ہیں۔ تو جب اس طرح کا معبد بنایا جاتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی بیت اللہ میں یہی صورتحال چلی آ رہی ہے، اس میں لوگوں کی ذمہ داریاں مقرر ہیں اور وہ ان کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف زکریہ کا میں نے کرا دیا۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کیا تھا۔ اب قرآن مجید نے بس یہاں سے بات شروع کی اور وہ اصل مدعا بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی کس موقع کا ذکر ہے، فضل و رحمت کا یہ غیر معمولی واقعہ کس وقت ہوا جس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جب اس نے پروردگار کو، اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، یعنی عبادت کے دوران میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے سرگوشی کے انداز میں دست بدعا ہوا۔ اس نے ایک خاص دعا کی، ایک خاص خواہش کا اظہار کیا اپنے پروردگار سے۔ میں نے لکھا ہے یعنی راز و نیاز کے انداز میں، یہ ندان خفیہ کا ترجمہ ہے، یعنی راز و نیاز کے انداز میں۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اس لیے کہ اسی میں بندہ اپنے پروردگار کے لیے خاص ہو کر اپنی درخواست اس کے حضور پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ چپکے چپکے اپنی بات کہتا ہے، راز و نیاز کے انداز میں کہتا ہے، جب وہ اپنے رب ہی کو سنانا چاہتا ہے، تو یہ دعا کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں تو بلند آہنگ ہو کر دعا کرنے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ اپنے رب کو پکاریے، وہ سننے والا ہو، بندہ کہنے والا ہو، اور پھر وہ اپنا دل اس کے سامنے رکھ دے۔ تو فرمایا کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، کیا کہا؟ کالا ربی انی واہن عزم منی وشتا الراس و شیبہ ولم اکم بے دعائے کا ربی شکیہ۔ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ یہ گویا انہوں نے بالکل آخری زمانے میں، جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، پہلے اپنی ناتوانی اور اپنے ضعف کا اظہار کیا ہے۔ بندہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اور اب دیکھیے کیا کہا ہے، ولم اکم بے دعائے کا ربی شکیہ، پروردگار آج کچھ مانگنے لگا ہوں اس لیے کہ تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہوں، اس سے بات کر رہا ہوں، और पहले ही जुमले से गोया रहमत पर कमन डाल दी। ये कभी हुआ ही नहीं कि मैंने पुकारा हो और मैं नामुराद लौटा हूँ। अब मैं बुढ़ापे में एक दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ। इस पर मैंने लिखा है कि आगे की आयतों में इशारा है कि उन्होंने ये दरख्वास्त हैकल में गालिबन एतकाफ़ की हालत में पेश की। आगे मालूम होता है कि वो मोतकिफ़ थे, और जिस तरह हम रमज़ान में एतकाफ़ करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीका ये था कि 10 दिन के लिए बिलमूम एतकाफ़ करते थे। उन 10 दिनों ही में जितना कुरान नाजिल हो चुका होता था वो जिब्रील आके दोबारा पढ़ते थे। इसी तरह एतकाफ़ की रवायत काहिनों में भी रही है, बनी इसराइल के यहाँ भी थी, बनी इस्माइल के यहाँ भी एतकाफ़ का जिक्र खुद कुरान में है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के बारे में भी ये बयान किया जाता है कि वो रमज़ान के महीने में एतकाफ़ करते थे, और यहाँ बुत रख दिए गए थे बैतुल्ला में, इसी वजह से फिर उन्होंने एक गार का इंतखाब किया, वहाँ जाके वो एतकाफ़ कर लेते थे। और ये भी मालूम होता है कि उस मौके पर ख़ास एहतमाम करते थे कि गरीबों की मदद की जाए, उनके लिए खाना पकाया जाए। तो महीना महीना बाज़ औक़ात वो हिरा के पहाड़ पर चले जाते थे। ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ही की रवायत थी, जिसको आपने भी बाद में कायम रखा। आप भी बिलमूम रमज़ान के महीने में एतकाफ़ के लिए वहाँ चले जाते थे। ये ना कोई मुराकबा था, ना कोई रूहानी मरातब हासिल करने की कोशिश थी, ये एतकाफ़ था जो अम्बिया की उम्मतों में हमेशा रहा है। उसकी मैंने वजाहत कर दी है और बता दिया है कि वो रवायतों में किस तरह से मजकूर है, उसमें क्या अहतमाम किया जाता था। इस वक्त भी अगर आप हिरा के गार में जो सामने की तरफ रोशनदान सा बनता है वहाँ खड़े हो जाएं, तो आपको बिल्कुल आपकी आंखों के नीचे बैतुल्ला नज़र आता है। बहुत सही जगह का इंतखाब उन्होंने किया था, वहाँ जाके बिलमूम एतकाफ़ करते थे। यहाँ से उन्होंने अपनी दुआ शुरू की। मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, और ऐ परवरदिगार तुझसे मांग कर मैं कभी नामुराद नहीं रहा। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिम वराई व कानत इमराती आकिरा व हबली मिन लदुन का वलिया। दुआ देखिए क्या की। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों से अंदेशा है, मेरा ख़ानदान है उसमें मैं ये दीनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा हूँ। मेरे ख़ानदान के बाकी लोग ही हैं जिन्होंने मेरे बाद मेरी जगह लेनी है, मैं उनके बारे में मुतमिन नहीं। मैंने वजाहत किया, यानी वो दीनी और अख्लाकी लिहाज से अच्छे लोग नहीं। ऐसा होता है ना, एक ख़ानदान को मुकर्रर कर दिया गया है, ज़रूरी तो नहीं कि उसमें सब ज़करिया ही पैदा हों। वो दीनी और अख्लाकी लिहाज से अच्छे लोग नहीं हैं, चुनाचे अंदेशा है कि मेरे दुनिया से रुख्सत हो जाने के बाद, बूढ़े हो गए हैं तो दुआ कर रहे हैं कि मेरे दुनिया से रुख्सत हो जाने के बाद मेरी और मेरे ख़ानदान की उन रवायात को कायम न रख सकेंगे जो हमारा असल सरमाया इम्तियाज। तो यहाँ दुआ वो क्या करने लगे हैं, अपनी दीनी जिम्मेदारियों की जानशीनी के बारे में इस्तराब है। ये दुआ कैसे रद्द हो सकती। तो वो ये कहते हैं कि मुझे अपने भाई बंदों से अंदेशा है, वह कानत इमराती आकेरा, और मेरी बीवी बांझ है, उसके यहाँ कोई पैदाइश का इम्कान नहीं है, और मेरी बीवी बांझ है। अगली बात कहने से पहले ये समझ लीजिए कि ये तमहीद उन्होंने क्या खूबसूरत बांधी है। मैंने इसकी वजाहत में लिखा है यहाँ तक उस दरख्वास्त की तमहीद है जो उन्होंने आगे पेश फरमाई है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, हजरते ज़करिया ने अर्ज़े मुद्दा से पहले, यानी दुआ पेश करने से पहले क्या मांगना है, अर्ज़े मुद्दा से पहले उसके लिए तमहीद उस्तवार की है, और इसमें शुबा नहीं कि ऐसी मौसर तमहीद उस्तवार की है कि अगर सूए अदब पर महमूल न कीजिए तो अर्थ करूं कि ये खुदा की रहमत पर कमल डालने वाली तमहीद है। حضرت زکریہ نے ایک تو اپنے ضعف و ناتوانی کو سفارش میں پیش کیا، دوسرے اپنے ساتھ زندگی بھر اپنے رب کے معاملے کو کہ میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ اے رب، میں کبھی تجھے پکار کے محروم نہیں رہا۔ غور کیجئے کہ جو سائل جس در سے کبھی محروم نہیں لوٹا ہے، وہ اس پیری اور ناتوانی میں، اس بڑھاپے میں، جبکہ اس کی ہڈیوں تک کی گود خشک ہو چکی ہے، اس دروازے سے کس طرح محروم لوٹایا جائے گا؟ یہ تمہید انہوں نے باندھی اور پھر آگے اپنی درخواست پیش کی ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول و قولی ھذا، واستغفر اللہ لی ولکم۔